जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन गज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन यमुना तीरा बन जय राधा माधव कुंज हरी जय राधा माधव कुंज हरी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन गज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चाहिए यमुना तीरा बन चाहिए माधव परमहंस परिव्राज प्रचारी अष्टोत्तरशत्री श्रीमद्भिष्टवाहिनी अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रवचिस्कोन सौंदराचार्य श्री होलवर्ण जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सरथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौणताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंद All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. तो चूंकि आज जन्माष्टमी का उत्सव बहुत निकट आ रहा है तो हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की. श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद के पांचवें अध्याय में नंद महाराज के उत्सव का वर्णन है. भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था. कंस के कारागार में आधी रात अर्धरात्रि को, तो किसी को पता नहीं चला। तो कृष्ण के जन्म उत्सव की कोई बात ही नहीं जानता था, कुछ भी नहीं पता चला कृष्ण के जन्म का किसी को। और चोरी चोरी वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा से कहाँ ले गए, गोकुल में ले गए, है ना। लेकिन अगले दिन सवेरे उत्सव हुआ, कहाँ पर, गोकुल में, नंदोत्सव कहलाता है। तो इसका जो विवरण है ये श्रीमद् भागवत से मैं पढ़ रहा हूँ। नंद महाराज ने अपने नवजात शिशु का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। कृष्ण जन्म से सारे वृंदावन में अत्यधिक उल्लास था, हर व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसलिए ब्रजराज महाराज नंद ने इस शिशु का जन्मोत्सव मनाना चाहा और उन्होंने इसे मनाया भी। इस महोत्सव में उन्होंने उपस्थित लोगों को मुहे मांगी, भेंटें दी। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित से, नंद महाराज अत्यंत उदार थे, अतः जब श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाए। आप जानते हैं नंद महाराज की उम्र कितनी थी उस समय, 88 वर्ष की थी वृद्धावस्था में। उनको वृद्धावस्था में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, बहुत यज्ञ किए, तीर्थ किए, व्रत किए पुत्र प्राप्त करने के लिए। अब सोचिए इतनी अवस्था में जब कोई पुत्र उनको प्राप्त होगा तो कितना उनको खुशी नहीं होगी। अतः स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके और समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक मंत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं की पूजा का भी प्रबंध किया और पितरों की, पितृ देवार्चनम, पितृ पूजा देव पूजा का भी प्रबंध किया। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामन आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता वाचे त्वा स्वस्यैनं जाति कर्मात्मजस्य मे कार्यामास विधिवन् पितृदेवार्चनं तथा। तात्पर्य में लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्दों के महत्व की व्याख्या की है। इसमें सुखदेव गोस्वामी के शब्द क्या है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज का मतलब जानते क्या है, कृष्ण को कहा गया है नंद आत्मज, है ना। आत्मा का एक अर्थ शरीर भी होता है और जा का मतलब जन्म लेने वाला, जिसने नंद के शरीर से जन्म लिया, यानी कृष्ण को नंद का पुत्र ही मानता है। सुखदेव गोस्वामी का इशारा है कि कृष्ण नंद के ही पुत्र हैं। इसमें बड़ा रहस्य है, नंद के पुत्र कैसे हैं, वो तो वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव के शरीर में आए थे कृष्ण, और जब वसुदेव के शरीर में आए थे कृष्ण तो वसुदेव जी का शरीर सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था, और जब वसुदेव जी के शरीर से देवकी के शरीर में कृष्ण आए तो देवकी का शरीर तेजस्वी हो गया, कारागार का अंधकार दूर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं आत्मज, नंद के आत्मज, नंद के शरीर से पैदा हुए कृष्ण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का कहना है कि तू शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन से किया गया है। तू, यद्यपि कृष्ण देव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए किंतु वसुदेव और देव की इस पुत्र के जन्म का आनंद नहीं उठा पाए, उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने। जैसा कि यहाँ बताया गया है, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादु महामना। तो इससे क्या इशारा मिलता है कि नंद महाराज की तपस्या ज्यादा बड़ी है। वसुदेव देव जी ने तपस्या की जिससे कृष्ण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन नंद यशोदा की तपस्या उनसे ज्यादा है। क्यों, कौन बताएगा? नंद यशोदा की तपस्या ज्यादा है क्योंकि कृष्ण के जन्म का आनंद नंद महाराज मना रहे हैं, इस कारण से नंद की तपस्या ज्यादा है। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण वास्तव में तो मेरा पुत्र है। नंद जी वसुदेव जी से मिलने गए थे मथुरा कृष्ण के जन्म के बाद, कृष्ण के जन्म के 3-4 दिन के बाद नंद जी गए थे। वसुदेव जी से मिलने नहीं गए थे क्योंकि वसुदेव जी से मिलना बड़ा खतरनाक था। वसुदेव जी से मिलना बड़ा खतरनाक था क्योंकि कंस के जासूस वसुदेव जी के घर के चारों तरफ घूमते रहते थे कि कौन बात करता है वसुदेव से, क्या बात करता है वसुदेव से। क्यों? क्योंकि कंस को मारने वाला जो शत्रु है वो वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र होगा, इसलिए नंद की बहुत कंस की बहुत निगरानी थी वसुदेव के ऊपर। तो नंद जी ब्रज से गए थे मथुरा, वसुदेव जी से मिलने नहीं गए थे। क्या करने गए थे, किस लिए गए थे? कंस का कर चुकाने, वार्षिक कर, साल में एक बार कर चुकाना पड़ता था नंद जी को, यानी गोरस देते थे कंस को। ब्रज भर का पूरा जितना गोरस है वो इकट्ठा करके कई बैलगाड़ियों में लाद करके और एक साल में एक बार कंस को दे आते थे। लेकिन इसी समय वो कंस को कर चुकाने गए, क्यों? कि कंस जो है किसी प्रकार का उत्पात पैदा ना करे, विशेष रूप से अभी कृष्ण का जन्म हुआ है तो कृष्ण के ऊपर कोई संकट ना आए कंस के कारण, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंस को कर चुकता करने के लिए कृष्ण जन्म के बाद ही गए नंद महाराज। लेकिन फिर जब मौका मिला तो वसुदेव जी से मिले, तो चुपके चुपके वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी के 6 पुत्र कंस ने मार डाले थे, हालांकि कारागार से मुक्त कर दिया था कंस ने। आधी रात में जब कृष्ण का जन्म हुआ और कंस आया तो उसको पता चला कि कन्या है, और कंस ने कन्या को मार डालना चाहा तो कन्या आकाश में चली गई, और कन्या ने कहा कि तेरा शत्रु किसी और स्थान में जन्म ले चुका। तो कंस ने यह समझ करके कि मेरे शत्रु ने जो है डर करके अब देवकी से जो जन्म लेना था तो अपना प्रोग्राम बदल दिया मेरे डर के कारण, तो किसी और स्थान में उसने जन्म ले लिया है। तो वसुदेव देवकी को उसने मुक्त कर दिया कारागार से कि मेरे शत्रु ने अपना कार्यक्रम बदल दिया, जहां जन्म लेना का विचार था वहां जन्म ना लेकर के किसी और स्थान में जन्म लिया है। तो फिर वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी, उनको कारागार से मुक्त कर दिया। लेकिन तो भी वसुदेव देवकी पूरी तरह से मुक्त नहीं थे, कंस के सब जासूस जो है ना दीवालों में भी कान लगे हुए थे कि कौन मिलता है और क्या रहस्य है वसुदेव और देवकी के बारे में, जो भी रहस्य हो कंस जानना चाहता था। तो हजारों कान और हजारों आंखें जो है वसुदेव देवकी के चारों ओर लगे हुए थे। तो नंद जी जब गए वसुदेव से मिलने के लिए तो बहुत ही संक्षिप्त बातचीत हुई उनके बीच में। वसुदेव जी ने यही कहा कि बड़े सौभाग्य से आपको वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है। वसुदेव जी ने नहीं कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं छोड़ के आया हूं तुम्हारे घर में अपने पुत्र को। तो वसुदेव जी ने यह प्रकट नहीं किया। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जन्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है। अब एक और भी आश्चर्य की बात है, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो रात रात में जो है बसदेव जी कृष्ण को यशोदा की सैया में लेटा आए और कन्या को ले आए। अब नाल जो है ना, नाल तो कटा नहीं, नाल किसने काटा और इसकी किसी ने परवाह नहीं की, इसका ध्यान ही नहीं दिया कि नाल कटा है कि नहीं नाल कटा है। बालक बाहर से आया है, आसमान से आया है, कहां से आया है, इसकी किसी ने चिंता नहीं की। इस खुशी के मारे कि बच्चा जो है कहां से आया है, लेकिन खुशियां मना रहे हैं। तो इस बात के लिए अवसर ही नहीं था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसीलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हों और भले ही कृष्ण का नाल ना काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती हैं। जैसे कृष्ण ब्रह्मा के नथनों से वराहदेव के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा को वराहदेव का पिता कहा जाता है। कार्यामास विधिवत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं। इसमें कई रहस्य हैं। एक रहस्य यह है कि कृष्ण ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया और यशोदा के एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्री वही थी जिसको वसुदेव जी ले गए, लेकिन उस पुत्री के पहले कृष्ण का जन्म हुआ। और ये दो बालक पैदा हुए। मथुरा में एक बालक पैदा हुआ चार भुजाओं का कंस के कारागार में, और एक बालक पैदा हुआ गोकुल में यशोदा के गर्भ से, दो भुजाओं का बालक है ना। और फिर इसमें बड़ा रहस्य है कि वो दो बालक जो है ना एक बन गए। यशोदा का जो बालक है वो वहां आकर के कंस के कारागार में जो चतुर्भुज बालक को अपने में लीन कर दिया और फिर उस बालक को जो है यशोदा का ही जो बालक था उसको ही वसुदेव जी यशोदा की सैया में फिर से लेटा देते हैं। तो कार्यामास विधिवत शब्द में महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया ये उत्सव उचित था, इसलिए ये उत्सव हर जगह क्या कहलाता है, नंदोत्सव। अब नंद महाराज ने क्या किया, उत्सव मनाया तो क्या किया। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों और रत्नों से अलंकृत 2,000,000 गौएं दान दी। क्या, ध्यान दीजिए, 2,000,000 गौएं ब्राह्मणों को दान दी नंद महाराज ने, और 2,000,000 गौओं को भी कैसे सजाया, वस्त्रों से और रत्नों से सजा करके। 2,000,000 गायें वस्त्रों से और रत्नों से सजा करके नंद महाराज ने ब्राह्मणों को दान दी। और 7 पहाड़ दान दिए, तिल के 7 पहाड़ दान दिए, और उनमें पहाड़ों में तिल के पहाड़ों में वस्त्रों से, सुनहरे वस्त्रों से ढके गए और रत्नों से ढके गए वो पहाड़। इस प्रकार से उन्होंने दान दिए नंद महाराज ने। इस स्नान से शरीर को शुद्ध किया और संस्कार से जन्म को शुद्ध किया, तपस्या से इंद्रियों को शुद्ध किया, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से संपत्ति को शुद्ध किया, संतोष से मन को शुद्ध किया और कृष्ण भावनामृत से आत्मा को शुद्ध किया। ये उत्सव है कृष्ण के जन्म का, उत्सव इस प्रकार से मनाना चाहिए। ये कई प्रकार की शुद्धियां बताई गई हैं। इस नाम से शरीर को शुद्ध करो, और संस्कार से जन्म को शुद्ध करो, तपस्या से इंद्रियों को शुद्ध करो, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देकर के संपत्ति को शुद्ध करो, संतोष से मन को शुद्ध करो और कृष्ण भावनामृत से क्या शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो। काले निस्नान शौचाभ्याम संस्कार है सब चेज्यम शुद्ध्यं दिदाने संतुष्या द्रव्यान्यात्मात्म विद्यया। हाँ, नंद महाराज के गांव में लोग जानते थे कि वस्तुओं को किस तरह से शुद्ध किया जाता है, जिसके कारण वे पाप रहित जीवन बिताते थे। देखिए ये शिक्षा है, नंद महाराज के गांव में सब लोग शिक्षित थे, वैसे देखा जाए तो अशिक्षित थे बेचारे, लेकिन आजकल की शिक्षा में ये शुद्धि कुछ नहीं सिखाई जाती है, कैसे आत्मा को शुद्ध किया जाए, कैसे मन को शुद्ध किया जाए, कैसे इंद्रियों को शुद्ध किया जाए, सब अशुद्ध है, हैं? और वैसे देखने के लिए बड़े शिक्षित हैं लोग, तो क्या फायदा ऐसी शिक्षा, जिस शिक्षा से अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त हो, क्या फायदा। लेकिन जो ब्रजवासी ये शिक्षित हैं, क्योंकि भी आत्मा को शुद्ध करना जानते हैं, शरीर को शुद्ध करना जानते हैं, मन को शुद्ध करना जानते हैं, इंद्रियों को शुद्ध करना जानते हैं। ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक मंत्र पढ़े, जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया, और प्राचीन पुराणों को सुनाने वाले वाचकों ने जब पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, गवयों ने गाया, भेरी दुंदुभी और वाद्य यंत्रों के साथ गान किया। सोमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध वंदिनः गायका चा जगुर्ने दुर धैर्य दुंदु भयो मुहु। नंद महाराज का निवास कैसे सजा है, ये ब्रजपुर कहलाता है, ब्रजपुर। ब्रजपुर कैसे सजा है नंद महाराज का निवास, रंग बिरंगी झंडियों से और झंडों से सजा है, विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं से सजा है, वस्त्रों और आम की पत्तियों से द्वार बनाए गए हैं, घर घर में जो है ना सजावट है, आंगन सड़कों के पास के दरवाजे और घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी प्रकार से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई हैं, घर के अंदर भी सफाई बाहर भी सफाई। ब्रजा समृत संसिक्त द्वारा जिरे गृहांतर चित्र ध्वज पताका स्रंग चैल पल्लव तोरण। अब जो गोकुल के गौएं और बैल हैं वो कैसे सजे हैं, जो गौएं हैं और बैल हैं और बछड़े हैं उनके शरीर पर हल्दी और तेल के साथ लेप किया गया है, उनके मस्तकों पर मोर पंखों से सजावट की गई है और उन्हें मालाएं पहनाई गई हैं, ऊपर से वस्त्र और सुनहरे गहनों से सजाया गया है। देखा, गौएं बैल और बछड़े भी सजे हैं सुनहरे वस्त्रों से, और तेल और हल्दी मिलाकर के जो है हाथ के छाप लगाए गए हैं गौओं बछड़ों और बैलों के शरीर पर। गावो वृषा वत्सतराम हरिद्रा तैल रोषिता विचित्र धातु बरह स्रंग वस्त्र कांचन मालिना। हे राजा परीक्षित, ग्वाले खूब सजे धजे हैं, वृश्चिक वाले खूब सजे धजे हैं, क्या अत्यंत मूल्यवान गहने पहने हैं, कंचुक और पगड़ी धारण किए हैं। कंचुक जानते क्या है, कंचुक, कंचुक कमर में जो वस्त्र बांधा जाता है उसे कंचुक कहते हैं, है ना, तो बहुत ही सुनहला जो वस्त्र है कमर में बांधे हैं और पगड़ी बांधे हुए हैं, सजे खूब सजे धजे हैं, इस तरह से सज धज कर और अपने हाथों में तरह तरह की भेंटे लेकर नंद महाराज के घर में आए। महार है वस्त्राभरण कंचुकोष में सभूषिता गोपा समाययो राजन नानोपायन है पाणया। अब गोपियां क्या करते हैं, परम प्रसन्न है कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, ये गोपियां कौन सी गोपियां हैं? प्रेसी गोपियां नहीं है, दो प्रकार की गोपियां हैं, तो माता गोपियां हैं, दूसरी प्रेसी गोपियां हैं। तो ये प्रेसी गोपियां नहीं है, हा? कृष्ण के जन्म के समय तो प्रेसी गोपियां थोड़ी, हा? वो तो वो भी जन्म ले रही हैं, जन्म लेने वाली हैं। तो ये कृष्ण की माता गोपियां हैं जो कि प्रसन्न है और माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, अतः वे उपयुक्त वस्त्रों, गहनों और काजल आदि से अपने को सजाने लगी। गोप्यस्या कर्ण मुदिता यशोदाया श्रुतोद्भवम् आत्मानं भूषयां चक्रुर् वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। अब उनके जो मुख हैं, माता गोपियों के मुख हैं, कमल जैसे असाधारण सुंदर मुख हैं, उन मुखों को केसर से सजाया और नव विकसित कुमकुम से सजा करके गोपियां अपने हाथों में भेंटे लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चली। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे और उनके बड़े बड़े स्तंभ तेजी से चलने के कारण हिल रहे थे। नव कुमकुम किंजल के मुख पंकज भूत यहां बलि विस्वरितम जगमो पृथुश्रोण्य चलत कुचां। गोपियों के कानों में चमचमाते रत्न जटित कुंडल थे और उनके गले में धातुओं के हार लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे, उनकी वेशभूषाएं विविध रंगों की थीं और उनके बालों में लगे फूल मार्ग पर गिर रहे थे मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां उनके कुंडल, उनके हिलते स्तन और मालाएं अति सुंदर लग रहे थे। गोपियां सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्यं चित्रांबरा पति सिका च्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रज तीर वेरे जुन जालोल कुंडल पयो धर हार शोभा। तात्पर्य में लिखा है कि कृष्ण का स्वागत करने के लिए महाराज नंद के घर जा रही गोपियों का वर्णन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं थीं, अपितु वे कृष्ण की हलादरी शक्ति थीं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रसन प्रतिभाविताभिन ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभिः गोलोक एव निवशन् चखिलात्म भूतौ गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि चिंतामणि प्रकर तन्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभि रभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। कृष्ण जहां भी जाते हैं गोपियों द्वारा पूजित होते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण का इतना विशद वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कृष्ण का वर्णन इस प्रकार से किया है, क्या चैतन्य महाप्रभु कहना है, रम्या काच दुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। सारी गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर कृष्ण के पास जा रही थीं क्योंकि वे भगवान की नित्य संगिनियां हैं। अब गोपियां वृंदावन में कृष्ण के आविर्भाव का समाचार पाकर इतनी अधिक प्रफुल्लित थीं। अतः न केवल नंद महाराज के ब्रज के पड़ोस में अपितु सारे ब्रह्मांड में तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों में भगवान के शुभ आगमन पर वाद्य यंत्र बज उठे। विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे कृष्ण विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रज मागते। वाद्य यंत्र बज उठे, ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीरों में दही खीर मक्खन और जल का मिश्रण छिड़क कर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और परस्पर एक दूसरे के शरीर पर लेप किया। इस प्रकार का जो है उत्सव है, मक्खन लगाते एक दूसरे के मुंह पर, जो ब्रजवासी हैं मक्खन लगाते एक दूसरे के मुंह पर और दही खीर और पानी के छिड़काव करते एक दूसरे के ऊपर। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीत सचिक्षिपुः। तात्पर्य में लिखा है, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले दूध दही और मक्खन की इतनी प्रचुरता थी कि न केवल खाने पीने और भोजन बनाने के लिए पर्याप्त था, अपितु उत्सव में बिना रोक टोक के फेंका भी जाता था। मानव समाज में दूध दही मक्खन और ऐसे पदार्थों की चाहे जितनी मात्रा प्रयुक्त की जाए, इस पर कोई रोक टोक रोकना थी। हर व्यक्ति के पास दूध का प्रचुर संग्रह था और इससे नाना व्यंजन बनाकर लोग प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रहते और कृष्ण भावनामृत का जीवन बिताते थे। इसके बाद उदारचेता महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र आभूषण और गौएं दान में दी। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा, यानी पुत्र के कल्याण के लिए। नंद महाराज को इतनी चिंता है, कृष्ण के कल्याण के लिए जो है ब्राह्मणों को तो 20 लाख गौ में दान दी थी, उसके ऊपर और दे रहे हैं, सोचो इतनी महामना कहा गया। नंद महाराज का कितना उदार मन है, 20 लाख गौ में सजा करके, रत्नों से सोने से सजा करके ब्राह्मणों को दान देने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, और ग्वालों को भी दान दे रहे हैं। किस लिए? किसे दान दे रहे हैं? कृष्ण के कल्याण के लिए, उनको कृष्ण के कल्याण की चिंता है। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा। उन्होंने सूतों मागधों बंदियों को और अन्य वृत्ति वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। इतना दान दिया नंद महाराज ने, इतना दान दिया, भिखारियों को भी इतना दान दिया, रत्न और सोना इतना दान दिया कि वे ले नहीं जा पा रहे थे। जब वो ले जाते थे तो रास्ते में सो जाते थे, थक जाते थे, विश्राम करते थे, फिर उठाते थे, फिर इस तरह से थक थक करके जो है ना वो लेके गए। इतना दान दिया नंद महाराज ने। नंदो महामना सेभ्यो वासो अलंकार गोधनम कामेरदीनात्मा यथोचितम् अभूजयन् विष्णोराराधनार्थाय सुपुत्रस्योदयाय च। अब बलदेव की माता रोहिणी, आप जानते हैं बलदेव की माता रोहिणी कहाँ पर हैं? यशोदा के भवन में है। बलराम की माता है रोहिणी, यशोदा के भवन में है। तो नंद और यशोदा ने उनका बहुत अभिनंदन किया, बहुत सम्मान किया रोहिणी का, और दिव्य वस्त्र उनको दिए रोहिणी जी को धारण करने के लिए, और रोहिणी जी को काम दिया क्या, अतिथियों का स्वागत करने के लिए। जो स्त्रियां उनके यशोदा के महल में आई हैं, अतिथि स्त्रियां हैं, उनका स्वागत करती हैं रोहिणी जी, और इधर उधर घूम रही हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदितं व्यचरन् दिव्यवासहस्रं कंठाभरण भूषितां। तात्पर्य में लिखा है, बलदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को भी उनके पुत्र बलदेव समेत नंद महाराज की देखरेख में रखा गया था, क्योंकि उनके पति को कंस ने बंदी बना लिया था, अतः वे अधिक प्रसन्न ना थी। किंतु कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंदोत्सव पर जब नंद महाराज अन्यों को वस्त्र और गहने दान में दे रहे थे, तो उन्होंने रोहिणी को भी दिव्य वस्त्र और गहने दिए, जिससे वे उत्सव में सम्मिलित हो सके। इस तरह वे अतिथि रूप में आई, स्त्रियों का स्वागत करने में व्यस्त थी। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रोहिणी के पति बसदेव जी चूंकि मथुरा में है, तो ऐसी हालत में रोहिणी को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण नहीं करने चाहिए शिष्टाचार के अनुसार। जब पत्नी जो है पति से दूर होती है या पति पत्नी से दूर रहता है, तो पत्नी को जो है अपनी सजावट नहीं करनी चाहिए, ये शिष्टाचार है। लेकिन आज के दिन जो है वो जो नियम है वो तोड़ दिया। कृष्ण के जन्म उत्सव में इससे शिक्षा मिलती है, हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए क्या है, है ना, क्या नियम है। जन्माष्टमी के दिन जो है ना वो सब नियम तोड़ दिए जाते हैं, उत्सव मनाना चाहिए और सब जगह सजावट होनी चाहिए, अपने शरीर की और अपने मन की और अपनी आत्मा की और अपने घर की, अपने पड़ोस की, अपने गांव की हर जगह सजावट होनी चाहिए। जन्माष्टमी को बाकी सब नियम तोड़ दिए जाते हैं। हाँ, हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर भगवान और उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है, फलता उसमें समस्त संपदा सदैव निहित है। फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वो घर लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थली बन गया, लक्ष्मी जी के खेलने का स्थान बन गया नंद महाराज का ब्रज। सब प्रकार की संपत्ति आ गई वहां पर। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजा सर्वे समृद्धि मान, हरि निवास आत्म गुण रमा क्रीडम अभून। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, तात्पर्य लिखा है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम दिव्यमानम गोविंद माधि पुरुषम तम अहम भजामि। कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, कृष्ण जहां भी जाते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती हैं। लक्ष्मियों में प्रमुख हैं कौन? श्रीमती राधा रानी। अतः ब्रज भूमि में कृष्ण के आविर्भाव से ये सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र ही वहां प्रकट होने वाली है। नंद महाराज का धाम पहले ही ऐश्वर्यवान था और जब से कृष्ण प्रकट हुए वो सभी प्रकार से ऐश्वर्यशाली बन गया है। तो ये हमने पाठ किया श्रीमद् भागवत से। अब एक लेख जो हमने लिखा था जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस लेख का नाम है श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए और भगवत धाम जाइए। तो उस लेख का नाम है श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाइए और भगवत धाम जाइए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाने से भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। श्री कृष्ण जितने उपदेश भगवत गीता में अर्जुन को दिए हैं उनमें सबसे अधिक व्यवहारिक और महत्वपूर्ण श्लोक है कौन सा? चौथे अध्याय का नवा श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात ही अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण दो वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं, पहला क्या है? उनका जन्म, और दूसरा क्या है? उनका चरित्र। जो व्यक्ति इन दो बातों के दिव्य रहस्य को जान लेता है वह देह त्याग कर इस संसार में जन्म ना लेकर के सीधे श्री कृष्ण के धाम में जाता है। श्री कृष्ण का धाम एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को जाने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जीवन की वे सभी सुविधाएं हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया था कि गीता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोक यही है, क्योंकि यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण के धाम में जाने की ये सबसे अधिक सरल विधि है। हमें केवल ये जानना है कि श्री कृष्ण का जन्म इस भौतिक जगत में एक दिव्य घटना है। यद्यपि श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं और उनकी जन्म तिथियां भी मनाई जाती हैं, जैसे रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी आदि, तथा ये सभी जन्म तिथियां दिव्य हैं। फिर भी श्री कृष्ण के जन्म तिथि इन सभी में दिव्याति दिव्य है। इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, लौकिक रूप से श्री कृष्ण के जन्म की तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी या श्री कृष्णाष्टमी ना बोलकर जन्माष्टमी ही बोला जाता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इतना लंबा बोलते नहीं लोग, कृष्णाष्टमी भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी बोलते हैं। श्री कृष्ण के नाम के बिना भी जन्माष्टमी का अर्थ श्री कृष्ण का जन्मदिवस समझा जाता है, जबकि अन्य अवतारों की जन्मतिथि में ऐसा नहीं है। रामनवमी को जन्मनवमी नहीं बोलते, जैसे जन्माष्टमी बोलते हैं ऐसे जन्मनवमी तो नहीं बोलते, रामनवमी बोलना पड़ता है। या नरसिंह चतुर्दशी को जन्म चतुर्दशी नहीं बोलते, नरसिंह चतुर्दशी बोलना पड़ेगा। रामनवमी के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें राम का नाम ना हो तथा राम का जन्म दिवस समझा जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उन सब के नाम आवश्यक हैं यदि उनकी जन्मतिथि को समझना है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के जन्म की घटना अन्य अवतारों से विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त लोकप्रियता की दृष्टि से भी पता चलता है कि जन्माष्टमी का उत्सव संपूर्ण विश्व में जितना व्यापक है उतना अधिक अन्य उत्सव नहीं है। इसका कारण यही है कि श्री कृष्ण के धाम में जाने की एक अत्यंत सरल विधि है, जन्माष्टमी महोत्सव। जितनी अधिक धूमधाम तथा प्रसन्नता के साथ हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, उतना अधिक हम श्री कृष्ण के साथ जुड़ेंगे। और जितना अधिक हम श्री कृष्ण के साथ जुड़ते हैं, उतनी अधिक संभावना होती है श्री कृष्ण के धाम में जाने की। अब हम देखेंगे, यद्यपि श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव श्री कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव तो नहीं मना पाए, क्योंकि वे कंस के कारागार में थे, परंतु ब्रज में नंद महाराज तथा अन्य गोपों ने श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कितने धूमधाम से मनाया। गर्ग संहिता के अनुसार, अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने श्रीमद् भागवत से पढ़ा, अब गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता के अनुसार नंद महाराज ने इस उत्सव में 20 लाख गौओं का दान किया, वो तो इसमें भी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 किलोमीटर लंबी भूमि में अन्न के 7 पर्वत बनाए। सोचो, 3 किलोमीटर की भूमि में अन्न के 7 पर्वत बनाए और उनको रत्नों और सोने से सजा करके ब्राह्मणों को दान दिया नंद महाराज ने। नंद महाराज की जितनी गौएं थीं, उन सबके सींगों में सोना मढ़ा गया। 1 करोड़ गौएं थी नंद महाराज की, सबके सींगों में सोना मढ़ा गया, उनके गले में सोने की माला पहनाई गई, उन गायों के गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झनकार होती थी। ब्रज में जितने बैल थे, उन सबको मोर पंखों से और फूलों से सजाया गया था। गायों के साथ जितने बछड़े थे, उन सबको सोने की मालाओं से, मोतियों के हारों से विभूषित किया गया था। उनके पैरों में भी मंजीर बांधे गए थे। वहां पर जितने गोप थे, वे आपस में नंद के पुत्र के जन्मोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से बेहवल होकर आनंद के आंसू बहा रहे थे। वहां की माता गोपियों ने, वही माता गोपियां जो मैं चर्चा कर रहा था, वहां की माता गोपियों ने नूपुर, नए बाजू बंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणिमय कुंडल, करधनी, कंठ सूत्र, हाथों के कंगन और भाल देश में बेंदियों की नई नई छटाओं से अपने को सजाया। उस समय गोप दही, दूध और घी से और गोपांगनाएं ताजे मक्खन के लोनों से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही की कीच मच गई। सुन रहे हो, दही का कीचड़ मच गया। नंद भवन के बाहर भी दही का कीचड़ है और अंदर भी दही का कीचड़ है, इतना एक दूसरे को दही भिगोते हैं। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसल कर गिर पड़ते थे, उस दही की कीचड़ में फिसल के गिर जाते थे। कौन? बूढ़े लोग और मोटे लोग गिर जाते थे। और दूसरे लोग खूब ताली पीट पीट कर हंसते थे। जब गिरते थे लोग, तो मोटे मोटे लोग गिरते तो दूसरे लोग हंसते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रज में नंद महाराज तथा वहां के गोपों और गोपियों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव अत्यंत हर्ष के साथ मनाया। परंतु जहां तक वसुदेव जी की बात है, यद्यपि उनके पास कोई भी उपाय नहीं था कि कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते, परंतु फिर भी उन्होंने हर्ष के मारे अपने मन में ही ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान कर दिया। तथा इस बात की उन्हें चिंता भी बनी रही कि जैसे उन्हें अवसर प्राप्त हो, वे वास्तविक रूप में ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान करेंगे। फिर जैसे ही कंस की मृत्यु हुई तथा वे कारागार से मुक्त हुए, तो उन्होंने सर्वप्रथम यही कार्य किया। इन बातों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण का भक्त बनने के लिए हमें भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। तो ये लेख है जो मैंने जन्माष्टमी के लिए लिखा है। तो इसमें एक बात और भी मिलती है, शास्त्रों में कि माता देव की चूंकि कृष्ण का जन्मदिन नहीं मना पाई, तो इस बात के लिए वो जब कृष्ण से मिली थी, जब कंस की मृत्यु हुई और कृष्ण मिले, तो देवकी को उस समय भी बड़ा दुख रहा कि मैंने अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मनाया। तो उन्होंने वरदान दिया, देवकी ने क्या वरदान दिया कि मैं नहीं बना पाई तेरा जन्मोत्सव, अब मैं वरदान देती हूँ कि पूरा संसार तेरा जन्मोत्सव मनाएगा। तो देवकी के इस वरदान से ही पूरे संसार भर के लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं बहुत उत्साह के साथ और बड़ी तैयारियों के साथ और बड़ी सजावट के साथ पूरा संसार मनाता है। क्यों? क्योंकि देवकी जी नहीं मना पाई, इसलिए इस कारण से। किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? उनका प्रश्न के चौथे अध्याय की 9वें श्लोक में भगवान के धाम की जाने की क्या विधि है, क्या विधि है, मैं आपसे पूछता हूँ। भगवान के जन्म घर में दिव्य है, ये श्लोक आप अपने कंठ हार बना लीजिए, अपने गले का हार बना लो, ठीक है, इस श्लोक को लिख करके और उसको गले में बांध लो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। भगवान के धाम में जाने की बड़ी सरल विधि है, कृष्ण के जन्म और कृष्ण के कर्म ये दिव्य है, एक दिव्य घटना है ये, है ना। इस बात को अगर समझ लो, ये आश्चर्य की घटना है, ये दिव्य घटना है ना। ऐसे नहीं कि नहीं हो गया तो हो गया, ठीक है तो क्या फर्क पड़ता है, हो गया तो हो गया, हम तो अपने पुत्र का जन्म मनाएंगे, हम तो अपना जन्म मनाएंगे, है ना, है ना। लोग अपने जन्मदिन और अपने पुत्रों के जन्मदिन मनाते हैं, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का जन्मदिन मनाए, क्योंकि ये है दिव्य, बाकी हमारा जन्म और हमारे कर्म ये क्या है, दुख भोगने के लिए होते हैं। हम जन्म और अपने अपने जन्म अपने कर्म से दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते और हम भी कष्ट भोगते हैं, और भगवान अपने जन्म और कर्म से स्वयं भी आनंद लेते हैं और दूसरों को भी सबको आनंद देते हैं। दिव्य हैं कृष्ण के जन्म कर्म, दिव्य हैं, है ना। कृष्ण के जन्म और कर्म को आप दिव्य समझ लोगे तो अपने जन्म और कर्म के बंधन से छूट जाओगे, है ना। हम जन्म लेते हैं तो एक बंधन है, है ना, हम कर्म करते हैं कर्म बंधन है कि नहीं, हम बंधे हुए हैं, है ना। सिर्फ जन्म बंधन से, कर्म बंधन से छूटने के लिए कृष्ण के जन्म और कृष्ण के कर्म का अगर आप जो है वर्णन करोगे, वर्णन सुनोगे, तो आप जन्म कर्म के बंधन से छूट जाओगे। और कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है कि प्रभुपाद ने एक विधि बताई है जन्माष्टमी की, और क्या विधि बताई है? नहीं, यही विधि है जन्म और कर्म। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो फैला हुआ है, कृष्ण के जन्म और कर्म का ही प्रचार करना है, यही है हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो ना कृष्ण का नाम है, कृष्ण से अलग नहीं है, ये भी कृष्ण का जन्म है, है ना, ये कृष्ण का अवतार है, है? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, तो ये भी एक अवतार है कृष्ण का। कृष्ण के बहुत से जन्म कर्म है, कृष्ण के और भी दूसरे जन्म कर्म है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम कृष्ण के अलावा और जो दूसरे अवतार हैं उनका हम ना करें, उनका भी हम जन्म कर्म, कृष्ण के और भी अवतार हैं। तो इन सब चीजों को हमें जानना चाहिए कि दिव्य हैं कृष्ण, जितने भी अवतार हैं, नाम रूप कृष्ण अवतार, ये भगवान का नाम है, ये भी कृष्ण का अवतार है कलयुग में। बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका, आप लोग थोड़ा सुनिए ध्यान से, इनका प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को जो है जानना चाहिए। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो भगवान की सत्ता पर तो विश्वास करते हैं, ये भगवान के जन्म कर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो कृष्ण के, तो वो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते भगवान की भक्ति। तो इन्हीं को ही निराकारवादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी कहा जाता है, जिसको कि प्रभुपाद जी ने खत्म किया, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणी। तो प्रभुपाद जी ने इसका खंडन किया है, निर्विशेषवाद शून्यवाद, जो भगवान के जन्म और कर्म को नहीं मानते हैं, है ना। हाँ, भगवान अजन्मा है, गीता में भगवान कहते हैं अजोपि सन्नभ्य आत्मा, मैं अजन्मा हूं, भगवान वास्तव में अजन्मा है। और वास्तव में भगवान जो है वैसे निष्क्रिय है, कि मतलब किसी प्रकार के कर्म से बंधे नहीं है, संसार के प्रपंच से जो ना उनसे उनका कोई संबंध नहीं है, भौतिक संसार के कर्मों से उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनको अजन्मा और उनको निष्क्रिय कहा जाता है ना, क्योंकि उनके ऊपर कोई जन्म का बंधन नहीं है, कोई कर्म का बंधन नहीं है इसलिए। लेकिन फिर जो उनका जन्म होता है, ये एक लीला होती है, जन्म भगवान जब जन्म की लीला करते हैं तो ये अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। भगवान पुत्र बनते हैं, है ना, जो भक्त भगवान के पिता बनते हैं, भगवान के माता बनते हैं, वे बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है ना। तो ऐसे लोग जो है निराकारवादी हैं, वे भगवान में मिलना चाहते हैं, ये भगवान स्वयं बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान में मिलना या भगवान बनना, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं वो तो भगवान से बढ़कर के हो जाते हैं, भगवान के माता पिता होते हैं, भगवान के मित्र बनते हैं, और जो भगवान के मित्र हैं वो भगवान से बढ़कर के हैं। देखो भगवान अपने मित्र अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, है ना, तो भगवान बनने से क्या फायदा है? भगवान से बढ़कर के जो भक्त हैं वो भगवान से बढ़कर के होते हैं। वो जो सेवा और प्रेम का जो आदान प्रदान है भगवान के साथ में, ये भौतिक संसार की कोई चीज नहीं है कि आप समझ सको इस चीज को। इस भौतिक संसार में आप किसी की नौकरी करते हो, गुलामी करते हो, तो सुख नहीं मिलता। तो वे लोग सोचते हैं भाई भगवान की नौकरी करने में, भगवान की सेवा करने में भी उसी प्रकार का अनुभव होगा, है? तो ये जो है उनका अज्ञान है। भगवान के जन्म और भगवान के कर्म जो है ना दिव्य है, और भगवान के जन्म है, भगवान के कर्म है, लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं है। भगवान जो है शरीर नहीं छोड़ते, भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान बीमार नहीं होते, भगवान जन्म लेते हैं आनंद देने के लिए, आनंद लेने के लिए, और बड़े होते हैं, शिशु लीला करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, कुमार लीला करते हैं, कोकंड लीला करते हैं, किशोर लीला करते हैं। 15 साल और 9 महीना 7.5 दिन की अवस्था तक उनका शरीर बड़ा होता है, उसके बाद स्थिर हो जाते हैं। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन उस अवस्था के बाद फिर भगवान की अवस्था बढ़ती नहीं है, वो फिर बड़े हो गए या द्वारका में गए, 16108 पत्नियों से विवाह किया और लाखों लाखों पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन वे उतने के उतने रहे। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन नवयौवनम, है ना, तो ये भगवान है। क्योंकि वृद्धावस्था के द्वारा कोई सुखी नहीं होता, कोई नहीं पाना चाहता, तो भगवान क्यों बोले होंगे? मृत्यु के द्वारा कोई भी सुखी नहीं होता, तो भगवान क्यों मरेंगे, है ना? तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये दिव्य हैं, भगवान के जन्म दिव्य हैं, इस बात को जो समझ ले वो भगवान के धाम में जाएगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।